रूप चेतना निर्वैयक्तिक वैयक्तिक। बिहारी की रूप चेतना वस्तुनिष्ठ है और घन आनंद की विषयनिष्ठ। बिहारी के अधिकांश रूप चित्र काव्यशास्त्रीय परिपाटी के अनुरूप हैं। उन्होंने पिटे हुए उपमानों के सहारे ही रूपाभिव्यक्ति की है। वहीं मीन, दृग, कदली, चंद्र आदि आभूषणों के संदर्भ में जो चित्र उभरे हैं वे अवश्य जगरमगर करते हुए दिख पड़ते हैं, किंतु ये सभी चित्र स्वर निरपेक्ष होने के कारण तन्मयी भवन की योग्यता से रिक्त हैं। रूप चित्रों के दो उदाहरण लीजिए। सहज सेत पचतोर या पहिरत अति छवि होति, जल चादर के दीप लौं जगमगाति तन ज्योति। बिहारी। झलकें अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन छय, हसी बोलन मैं छवि फूलन की बरसा उर ऊपरी जाती है हुए। लटलोल कपोल कलोल करय कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठय दुति की पहिरय मनो रूप अभय धर च्वय। घन आनंद। उपर्युक्त उदाहरणों में दोनों कवियों की रूप चेतना के दर्शन होते हैं। बिहारी ने जल चादर के दीप से नायिका की तंदुति को बिंबित करने का प्रयास किया है। पंचतोलिया साड़ी में छलकती हुई उसकी ज्योतिमयी आभा प्रत्यक्षीकृत हो उठती है। इसके द्वारा वह नायिका का समग्र सौंदर्य नहीं अभिव्यंजित कर पाता। घन आनंद नायिका के समग्र सौंदर्य को उसकी संपूर्ण प्रभावान्वित में ब्यौरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं। गोरा मुख अपने आत्यंतिक सौंदर्य में झलक उठता है। अनुराग से छकी आँखें कानों तक फैली हुई विराजमान हैं। वह हंस कर बोलती है तो आंचल में बरसते हुए फूलों की छवि छा जाती है। हवा के झोंकों में लहराती हुई चंचल लट उसके कपोलों के साथ खेल रही है। प्रत्येक अंग से कांति की लहरें उठ रही हैं। लगता है कि उसका रूप धरती पर जू पड़ेगा। इस प्रभावान्वित को घन आनंद ने जिस रूप में पकड़ा है वह उन्हें अन्य कवियों से अलग कर देती है। इस वैशिष्ट को घन आनंद की भाषा में ब्यौरा जाएगा। बिन विवेक गुण दोष मूढ़ कवियोरन बोलें। एक दूसरे स्थान पर भी उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। उर्गति ब्यौरी पे कौ सुंदर सुजान झुकौ। इससे कदाचित उनका अभिप्राय यह है कि एक प्रसंग की सारी विशेषताओं का ब्यौरा देना, लेकिन एक विशेषता का दूसरी विशेषता से भेद करना भी आवश्यक है। इस तरह उनके वर्णन में संश्लिष्टता आ जाती है। मुखमंडल का गौर वर्ण, आँखों का स्फालन, हंसकर बोलने की छवि, कपोलों पर क्रीड़ा करती हुई चटुल लट, गले का दोलड़ा मोतियों का हार और अंगों की द्युति के ब्यौरे से सौंदर्य का समग्र बोध कराया गया है। एक ब्यौरा दूसरे से अलग है, प्रत्येक की अपनी विशेषता है। इस ब्यौरे को संयोजित करना कवि की प्रतिभा पर निर्भर है। वस्तुतः यह सौंदर्य विषय मूलक है और अनुभूति सम्मिलित है और उसने सहज ही आकार ले लिया है। संयोग वियोग, पार्थक्य और अपार्थक्य। प्रेम में संयोग का सुख और वियोग का दुख होता है। सामाजिक व्यवस्था में इसके दोनों रूप दिखाई देते हैं। काव्यशास्त्र में भी इनका विस्तृत उल्लेख है। प्रेम का एक दूसरा रूप भी होता है जिसमें प्रेमी के पल्ले केवल वेदना है, केवल बेचैनी पड़ती है। इस प्रेम में मन को विश्राम नहीं मिलता, न संयोग में न वियोग में। उसके लिए दोनों समान हैं। बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। बिहारी ने संयोग वियोग को अलग अलग कोटियों में रख कर देखा है। घन आनंद के प्रेम में संयोग वियोग का अपार्थक्य है। बिहारी ने संयोग वर्णन के लिए शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण किया है। संयोग का मूलाधार शरीरी आकर्षण है। इसे अनेक प्रकार की भंगिमाओं, चेष्टाओं, वाचिक और मानसिक विकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नायिका कभी अपना घूंघट डाल लेती है, कभी झुकती है, कभी इतराती है, कभी चोर मिहिचनी का खेल होता है, कभी नायक छल से नायिका की छाती छूट देता है, कभी दोनों की आंखें लड़ती हैं, नायक नायिका को महावर लगाता है, उसकी वेणी गुस्ता है। घन आनंद का प्रेम विषम प्रेम है। इसमें प्रेमी की आसक्ति अत्यंत प्रगाढ़ है, किंतु प्रिय आसक्ति अनासक्ति के परे है। इस गहन प्रेम की एक ही परिणत है, निरंतर एक प्रकार की ज्वाला में तपना खपना। जब कभी प्रिय के दर्शन होते हैं, तब भी वियोग संग नहीं छोड़ता। साधन ही मरिए भरिए अपराधिनी बाधनि के गुण छावत, देखें कहा सपनो हूँ न देखत, नय नयो रैन दिना झरलावत। जो कहूँ जान लखें घन आनंद, तव तन नय कुन अवसर पावत। कौन वियोग भरे असुआ जो संयोग में आगे ही देखन धावत। उनका प्रेम अनिर्वच और दुस्तर है, उसमें गहरी आकुलता मर्मभेदी व्यथा और आर्तता का ऐसा आवेग है जो सामाजिक नैतिकता के रूढ़ बंधनों तथा रीति के व्याकरण को एक साथ तोड़ देता है। आवेग के हाहाकार का एक दृश्य देखिए। अंतर ही किधौ अंतर हौ, दृगफार फिरौ की अभागिन भीरौ, आगी जरौ अकि पानी परौ, अब कैसी करौ ही ये का विधि धीरौ। जौ घन आनंद ऐसी रुचित, कहाँ बस है अहो प्राण सी पीरौ, पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसौ की आकाश ही चीरौ। अलंकार और अलंकार्य। अलंकार और अलंकार्य का जो भेद रुद्रट ने किया, वह काव्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अलंकार्य को सायास अलंकृत किया जाने लगा। अलंकारों के विनियोग में कवि अपनी निपुणता का परिचय देने लगे। बिहारी ने अलंकारों के प्रयोग में जो कौशल दिखाया है, उसमें अद्भुत साफ गोई है। किसी किसी दोहे में अनेक अलंकारों को इस तरह से गूंज दिया गया है कि कहीं पर उलझन नहीं आ पाई है, किंतु घन आनंद में अलंकार्य और अलंकार का भेद मिट गया है। अलंकार्य और अलंकार में अद्भुत तद्रूपता आ गई है। उनका अलंकार अलंकार्य से इतना अभिन्न है कि वह शोभा कर धर्म न होकर स्वयं शोभा बन जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। उजरनि बसी है हमारी अखियान देखो, देखिए दशा असाध अखियान निपेटन की, भस्मी बिथा पर नित लंघन करती हैं। घन आनंद जान सजीयन कौ सपने बन पाइए खोवती हैं, न खुली मुंदी जानी परे कछुए, दुखहाई जगे पर सोवती हैं। विरोधाभास। विरोधाभास घन आनंद का सबसे प्रिय अलंकार है। यों उपमा उत्प्रेक्षा यथासंख्य विभावना आदि अलंकार भी उनमें मिलते हैं, पर अधिकांश कविताओं में विरोधाभास ही दिखाई पड़ता है। बिहारी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है, यद्यपि उनकी सत्तई में अलंकारों का अंबार लगा हुआ है। बिहारी की एक उत्प्रेक्षा देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सरोरुह गात, मनव नील मणिशैल पर आतप परेव प्रभात। इस अलंकार द्वारा बिहारी ने अत्यंत उत्कृष्ट बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ अलंकार काव्य के शोभाकर धर्म के रूप में ही आया है। उत्प्रेक्षा द्वारा वे एक चमक की सृष्टि करते हैं जो प्रस्तुत के स्पष्ट करने, शोभन बनाने और उत्कृष्ट गुण धर्मों से युक्त करने में सहायक सिद्ध होता है। सांवले कमल के समान शरीर वाले कृष्ण का पीतपट ओढ़कर सोना अलंकार्य कोष्ठ में वस्तु है। प्रातःकालीन आतप से शोभित नीलमणियों का शैल अलंकार है। घन आनंद के अलंकार अपृथग्यत्न निर्वर्त्य हैं, अर्थात उनकी कविता में अलंकार और अलंकार्य का भेद प्रायः नहीं मिलता। विरोधाभास के उपर्युक्त उदाहरणों में अलंकार्य और अलंकार को पृथक नहीं किया जा सकता। इसे अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए बिहारी का भी एक विरोधाभास अलंकार उद्धृत किया जाता है। लहिरति सुख लगियें गरे, लखी लजौ ही नीठ, खुलत नमो मन बंध रही वही अधखुली दीठ। यहाँ पर मो मन बंध रही वही अधखुली दीठ में केवल चमत्कार है, भावों की समृद्धि में इसका कोई योग नहीं है। कवि अधखुली को बांधकर शब्द क्रीड़ा करता हुआ प्रतीत होता है, पर घन आनंद के विरोधाभास और अनुभूत एक हैं। अपनी गहन पीड़ा को वह इसी तरह व्यक्त कर सकता है। यहाँ अलंकार्य और अलंकार एक हो गए हैं। अलंकार उसकी रचना प्रक्रिया के अंग हैं। अलंकार उसकी काव्यानुभूति की बुनावट का प्रमुख सूत्र है। इस संदर्भ में वामन का कथन सौंदर्यम अलंकार अपनी चरितार्थता पा लेता है। उजरन बसी है हमारी अखियान देखो में उजरन बसी है विरोधाभास का उदाहरण है, पर यह संपूर्ण अभिव्यक्ति का अनिवार्य अंग है। जो अलंकार है वही अलंकार्य भी है। भाषा शैली। बिहारी और घन आनंद दोनों ने ब्रजभाषा को संस्कृत परिष्कृत किया है। उनकी भाषागत परिनिष्ठता को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा व्याकरण के लिए उन दोनों कवियों की रचनाओं को आधार बनाने का सुझाव दिया है। पर व्याकरण सम्मत भाषा और काव्य भाषा में अंतर होता है। बिहारी की वस्तुपरक दृष्टि और परंपरानुमोदित भाव उनकी भाषा को भी बहुत कुछ परंपरा मुक्त ही बनाए रखते हैं, किंतु घन आनंद के लिए भाषा एक समस्या के रूप में आई है। यद्यपि वे ब्रजभाषा प्रवीण थे, फिर भी भाषा की अपूर्णता और अक्षमता से अवगत थे। वे सांचे में ढले हुए नायक नायिका दूती दूत आदि को भाषाबद्ध करने वाले कवियों में नहीं थे। न तो आगे के कवियों के रिझाने की उनको चिंता थी और न उन्हें कविताई के लिए प्रसिद्ध होने पर राधिका कन्हाई के सुमिरन का बहाना खोजना था। उनकी व्यक्तित्व की संरचना कोष्ठ में स्ट्रक्चर और विन्यास कोष्ठ में टेक्सचर कुछ अजीब तत्वों से निर्मित थे। उनकी प्रेम वेदना में सूफियों जैसी प्रेम की पीर थी, फिर भी वह उनसे भिन्न थी। मीरा का अनिर्वचनीय दर्द भी उनको मिला था, पर वह भक्त का भगवान के प्रति दर्द नहीं था। बोधा और ठाकुर के वैयक्तिक प्रेम की अनन्यता उनकी भी अनन्यता थी, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी था। घन आनंद के अभूतपूर्व प्रेम की अभिव्यक्ति परंपरा से प्राप्त काव्य भाषा में नहीं हो सकती थी। उनकी दृष्टि में भाषा ऐसा वस्त्र है जो श्वास के धागों से बुना हुआ है, अनुराग के रंग में रंगा हुआ है। अनुराग के रंग में रंगे हुए और भी वस्त्र थे, भक्तों के, सूफियों के, प्रेमी कवियों के, पर घन आनंद के वस्त्र का विन्यास कोष्ठ में टेक्सचर श्वास के ताने बाने से निर्मित हुआ था। इस नवीन विन्यास के कारण अन्य कवियों की भाषा से उनकी भाषा में गुणात्मक अंतर आ गया है। इसके लिए उन्होंने लक्षणा का सहारा लिया और भाषा की लक्षक और व्यंजक सीमा को की तलाश की। लक्षणा के प्रयोग की यह विलक्षणता फिर छायावादी काव्य में ही देखी गई। काव्य शास्त्रीय लक्षणा और व्यंजना के होने से ही कोई रचना काव्य कोटि में नहीं गिनी जा सकती। उनकी सार्थकता भावों को रमणीय रूप में प्रस्तुत करने में है। उदाहरण लीजिए, लड़कान की आनी परी छलकय दो, अलबेली सुजान के कौतुक पय इत रिझ इकोसी हुए लाज थकय तीन, जिन आखिन रूप चिन्हारी भय तिनकी नित नी रही जागनी है चार, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। उनकी लक्षणा के मूल में जो वक्रता दिखाई देती है वह अनुभूति जन्य होने के कारण स्वाभाविक है तथा वैयक्तिकता के रंग में रंगी होने के कारण उनकी अपनी है। विशेषणों, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग में भी बिहारी और घन आनंद के भाषा भेद को देखा जा सकता है। आँख के कुछ विशेषणों को देखिए, बंक विलोकन, अनियारे नयन, अहेरी नयन, ललचौही चखनी, लगौहे नयन आदि बिहारी, त्रिषित चखनी, अखियाँ निपेटनी, अखियाँ दुखताई आदि घन आनंद। बिहारी के विशेषण विषय से संबद्ध हैं तो घन आनंद के विषय से, अर्थात पहला वस्तुनिष्ठ है तो दूसरा विषयी निष्ठ। मुहावरों और लोकोक्तियों के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। सारांश यह कि बिहारी की भाषा प्रचलित साहित्यिक भाषा है। उसे परिनिष्ठित और प्रांजल कहा जाएगा, लेकिन उसमें कल्पना को प्रेषित करने की शक्ति नहीं है, गहन मानवीय अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, उनकी भाषा में परिचित और स्वीकृत मान्यताओं की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन घन आनंद के सामने अपनी निजी अनुभूति को प्रकाशित करने की समस्या थी। परंपरा से प्राप्त भाषा मौन को मुखर करती है, किंतु अन्वेषित भाषा मौन मध्य पुकार को उजागर करती है।